ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मधुबन तपोभूमि है, तपस्या करने का स्थान है, ये वरदान भूमि है, परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का स्थान है, ये ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने रहकर बहुत तपस्या की, तो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है। साथ साथ ये एक परिवर्तन भूमि है, जहाँ जो भी आत्माएं आती है वो सचमुच परिवर्तित होके जाती है और एक अमिट छाप अपने जीवन में लगा के जाती है। तो आप सब ऐसी भूमि पर आए हो जहाँ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जगत अम्बा सरस्वती, हमारी सर्व दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी अनेक दादियाँ यहाँ ही रही और यहाँ ही तपस्या की। तो 1950 से यहाँ माउंट आबू में आना हुआ और ये 58 में स्थान लिया गया था, जिसका नाम पोखरान हाउस था। पोखरान रण आप जानते हैं ना, राजस्थान में है, उनके ठाकुर का ये स्थान था सारा। और फिर उसके बाद छोटा मोटा कुछ बिल्डिंग्स बनी, लेकिन ज़्यादा तो जैसे बताए नहीं बना सके, तो आसपास के मकान लिए गए। और 1995 में हमारा ज्ञान सरोवर बना और फिर 1996 में नीचे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, 50 एकड़ ज़मीन, जहाँ हमारा बहुत बड़ा डायमंड हॉल है, 20,000 लोग बैठ सकते हैं, वो सारा बना। और आज तो एक विशाल वट वृक्ष है, लेकिन ये पांडव भवन बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही तपस्या से भरपूर स्थान है। और जो यहाँ आते हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो आप सब मुंबई के कोलाहल से दूर, जहाँ इतना वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, न जाने कितने प्रकार के प्रदूषण हैं, और सबसे बड़ा प्रदूषण मन का प्रदूषण, स्ट्रेस, स्ट्रेस वाला स्थान है जी, कॉन्क्रीट जंगल, तो इसलिए ऐसे स्थान से आप दूर आ गए हो। और ये तपोवन तपोस्थली है, तपस्या का स्थान है, आप यहाँ आए हो तो यहाँ कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, न जल प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, न ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ आवाज़ बहुत होता है, और न ही किसी प्रकार का मन का प्रदूषण, स्ट्रेस फ्री आप यहाँ रह सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर आप 3 दिन रहेंगे, जिसको बाबा कहते हैं भट्ठी में पकेंगे, आज भी बाबा ने कहा भट्ठी में पकेंगे। भट्ठी में पकते हैं ना, ईंटें कच्ची कच्ची ईंटें होती है, वो बड़े भट्ठे में डालते हैं, बहुत आग जलाते हैं और फिर क्या होता है, हाँ, वो ईंटें पक जाती है, कितनी मजबूत हो जाती है, नहीं तो मिट्टी की ईंटें होती है पर वो पक जाती है, और कितनी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकते हैं, ईंटों से ही तो खड़ी करते हैं, परंतु वो भट्ठी में पकने से स्ट्रांग हो जाती है। कोई भी चीज़ अग्नि में पड़ती है वो बदल जाती है, आप कोयला डालेंगे अग्नि में तो क्या होगा, वो राख बन जाता है, रंग भी बदल देता है, काले से ग्रे हो जाता है ना राख। फिर उसमें आप कचरा डालेंगे तो वो कार्बन बन के उड़ जाएगा, उसमें कोई बहुत घट्ट चीज डालेंगे, बहुत कठोर चीज डालेंगे तो वो नरम हो जाएगी। बैंगन, टमाटर, आलू डालते हैं ना आग में, बर्था बनाते हैं, तो वो नरम हो जाएगा। मानो उनकी तासीर भी बदल जाती है। और कोई ऐसे कच्ची चीज डालेंगे वो पक जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। सोना डालेंगे तो क्या होता है, उसमें से खाद निकल जाती है, जो उसमें एलॉय होता है वो निकल जाता है और सोना सच्चा हो जाता है, वो नरम हो जाता है और वो मोल्ड हो सकता है। तो ये वो स्थान है और आप आए हो उस भट्ठी में पकने के लिए। तो बताए ना, 3 दिन बिल्कुल आप इसी माहौल में अनुभव करेंगे। मुंबई याद नहीं करना, आएगा क्या मुंबई याद आएगा? हाँ, नहीं, जरूरत भी नहीं है। क्या हो रहा है वहाँ, जो होगा देखा जाएगा जब जाएंगे वहाँ, अभी सोचने से क्या होगा, इसीलिए सोचना भी नहीं है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर आए हो जहाँ सब तपस्वी मूर्त रहते हैं, पवित्र आत्माएं रहती है, परमात्मा की याद में रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर आए हो किस लिए? अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। तो इसलिए आपको बैज में भी क्या लिखत मिली, सेल्फ एम्पावरमेंट मेडिटेशन रिट्रीट। पढ़ी ना अपना, पढ़ा आपने बैज? हाँ, ये आपको गले में माला मिल गई है, ये माला विजय माला है। तो यहाँ से विजयी बन के जाना है, सेल्फ एम्पावर्ड होकर के जाना है। आज दुनिया में एम्पावरमेंट तो सभी चाहते ना, हम स्ट्रांग बने, मजबूत बने, सशक्त बने, एम्पावर्ड बने। लेकिन वो किस में एम्पावर्ड बनना चाहते हैं? धन में। मुंबई तो वो है ही फाइनेंशियल सिटी, एकदम फाइनेंशियल कैपिटल है। तो हर एक को अंदर यही आता है, मैं धनवान बनूं, क्योंकि धन भी एक शक्ति है। और मनुष्य जो बहुत धनवान बन जाता है उसको, वो तो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है। तो धन भी एक शक्ति है, लेकिन वो धन की शक्ति कितना समय चलती है? आज अचानक दिवाला मार दिया, गए काम से, अचानक भूकंप आ गया, सब नष्ट हो गया, गया सब, जमीन जायदाद मकान जो कुछ। भुज में भूकंप आया था 2001 में, और इतना जबरदस्त भूकंप था कच्छ भुज अंजार। तो देखा तो जब कैसे लोग भाग भाग के बाहर निकले और उनकी आंखों के सामने वो बिल्डिंग्स एकदम धराशायी हो गई, एकदम जमीन पर आ गए, और उनकी करोड़ों की मिल्कियत सब उस जमीन में खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो अगले दिन अखबारों में क्या आया, करोड़पति रोडपति बन गए, करोड़पति रोडपति बन गए। तो धन की शक्ति कितना सहयोग देती है। और फिर बीमारी आई तो सारा धन उस बीमारी में, दवाइयों में, हॉस्पिटल के खर्चों में चला जाता है। तो जितनी कमाई की वो सब खत्म। परंतु हर एक व्यक्ति समझता है मैं तो बहुत धनवान हूं, पर ये अल्पकाल का सुख है, हर सदाकाल का सुख नहीं है। क्योंकि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, अचानक रेड हो जाता ईडी का, सीबीआई का, न जाने क्या क्या रेड होते हैं। हाँ, किसका मोबाइल बज रहा है, वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो भी बंद कर देना चाहिए। तो इसीलिए किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए तो किसकी आग जलाए। पर वो ही धन किसका सफल होगा, जो ईश्वर अर्थ लगाए वो सफल होगा, वो आगे भी जन्मों में उसका सुख मिलेगा, नहीं तो यही रह जाएगा। तो धन से सशक्त होना यही लक्ष्य न हो, फिर चलो कोई धन से इतने सशक्त नहीं होते तो आजकल बड़े जिम्स बन गए हैं, चारों ओर जिम जिम, देखो वहाँ जिम, न जाने क्या क्या वहाँ कसरत करते रहते हैं अपना मसल्स बनाने के लिए। तो इसीलिए जिम्स देखो, लेकिन आजकल उसमें भी खतरा है, वो ट्रेडमिल पर चलते चलते हार्ट अटैक आ गया है ना। श्रीवास्तव कौन था, राजू श्रीवास्तव, देखो पता थोड़ी चलता है। तो इतना अपने आप को समझते मसल मैन बन जाऊं, तो वो मसल पावर एक शक्ति है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर कहेगा अभी कंप्लीट रेस्ट, कोई भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, अगर करना भी है तो केवल बस स्लो वॉकिंग, बस वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जॉगिंग भी नहीं। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉकिंग है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बाकी तो सब में नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए मसल्स बनाने हैं, इसकी भी वो लक्षण रखे कि इससे हम स्ट्रांग बनेंगे। हाँ, फिर कोई कहते अच्छा मनी पावर, मसल पावर, मशीन पावर, आजकल कितनी फैक्ट्रियां देखो, सब कुछ जो कुछ मिलता है रेडीमेड, कुछ भी हाथ से करना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं, मशीनों से सब काम होता है। और मशीन पावर इतना पावरफुल हो गया है कि सब काम सहज, मिनट मिनट मोटर तैयार हो जाती है, मशीन पावर है। लेकिन वो मशीनरी की थोड़ा सा पुर्जा ढीला हो गया तो गए काम से। हाँ, किसने बताया ना, मिसाल देते हैं कि वो मशीन चली नहीं रही थी, कितना मेहनत किया, कितना कोशिश किया, फिर आखिर जो बहुत अच्छा मैकेनिक था उसको बुलाया, तो कैसे एक पाँच दो मिनट में ठीक कर दिया, वो स्क्रू लूज था उसको ठीक कर दिया, और दूसरों ने कितनी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं ठीक। तो देखो मशीन भी कभी धोखा दे देती है, जब पता नहीं है कैसे ठीक होना है। तो मशीन पावर, फिर मैन पावर, किसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, तो उनको भी कितना अभिमान होता है, हाँ मेरे पीछे अनेक लोग हैं, मैं एक आवाज करूंगा सब मुझे फॉलो करेंगे। आजकल पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं ना, हाँ? हमको फॉलो करेंगे, लेकिन वो कब धोखा दे देंगे पता भी नहीं चलेगा। आज कुर्सी पर बिठाएंगे, कल कुर्सी से हटा देंगे, आजकल ऐसे भी है। तो मैन पावर भी धोखा देने में कोई कम नहीं है, उससे तो हम कहते हैं हमारे कुत्ते घोड़े वो वफादार है, वो इसीलिए आजकल ना कुत्ते ज्यादा रखते हैं, वही ना वही रखते हैं, हाँ मनुष्य नहीं, कुत्ते चाहिए, बिल्ली चाहिए, वो वफादार होते हैं। तो एक औरत थी, तो वो बहुत बिल्लियां पाल के रखी थी, तो मैंने कहा इतनी बिल्लियां आप पाल के रखी है, तो कहती है मुझे जब भी गुस्सा आता है ना तो मैं अपने बिल्ली पर निकालती हूँ, मनुष्यों पर निकाले तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, और वो बिल्ली पर निकालती हूँ तो बिल्ली तो बहुत प्यार से कहते मियाऊ। तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। क्योंकि मनुष्य पर गुस्सा करो तो क्या होगा, वो तो लड़ने आ जाएगा, मार भी डालेगा, पता नहीं क्या करेगा, दुश्मनी दिखाएगा, पर बिल्ली तो बेचारी म्याऊ करके वो सारा गुस्सा ठंडा कर देगी। ऐसे भी वो एक माता थी, ऑस्ट्रेलिया हम गए थे, तो वहाँ बहुत बिल्लियाँ पाल के रखी थी, और बहुत पुरानी थी, तो बहुत समय से वो सेंटर भी नहीं जा रही थी, मधुबन तो बहुत समय से आई नहीं थी, बहुत पुरानी थी, पहले बहुत आती थी, तो और बीमार भी थी। तो हमने कहा तुम क्यों नहीं सेंटर पर आती हो, कहती है कैसे आऊँ, मेरी बिल्लियों को कौन पालेगा, बिल्लियों को कौन पालेगा। तो देखो आजकल है ऐसे, पहले कहते थे अतिथि देवो भव, आजकल तो बाहर ही लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। अतिथि देवो भव, तो वेलकम शब्द तो भूल ही गया है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, अंदर आओगे संभल के आना। तो ऐसे भी है, तो इसीलिए मैन पावर भी कहाँ तक चलता है। फिर आप देशों में जाओ, हथियारों की होड़ है, हाँ नए नए सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स ले रहे हैं, वॉर फाइटर्स ये सब ले रहे हैं, ताकि दूसरे देश से रक्षा कर सके, वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, क्योंकि डर है ना कि कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो इसीलिए इतने सारे डिफेंस के लिए सारे हथियार ले रहे हैं, प्लेन एरोप्लेन्स ले रहे हैं, सबमरीन्स ले रहे हैं, वॉरशिप्स ले रहे हैं, ताकि हम सशक्त बने तो कोई हमारे पर अटैक न करे। परंतु जो चीज़ युद्ध के लिए बनी है, लड़ाई के लिए बनी, वो रखने लिए थोड़ी बनी है। इतने सारे एटम बॉम्ब्स बने हैं, बॉम्ब्स इतने बने हैं, तो रखने लिए थोड़ी बने। एक दिन यूज होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ विनाश ही होगा। तो इसीलिए कोई सोचे मेरे देश में मेरे बहुत सशक्त हूँ, मेरे पास एटॉमिक पावर है, ये पावर है, वो पावर है, लेकिन वो भी सब नष्ट ही करने वाला है। विज्ञान चाहे हमें कितना भी सुख दे रहा है, लेकिन विनाश के साधन भी तो वही बना रहा है। मुझे याद है जब मैं जैन कॉलेज में थी, वहाँ पढ़ती थी मैं, तो हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हुई थी, एलोक्यूशन कंपटीशन। इस साइंस अ बेन और अ बून, एक वरदान है या श्राप है? तो ये दो पार्टीज थी, दो ग्रुप्स थे। तो कोई ने कहा वरदान है, हाँ देखो आज मोबाइल है, आज कंप्यूटर है, आज ये है, आज वो है, न जाने क्या क्या है, तो बहुत बड़ा वरदान है विज्ञान। और कोई ने कहा नहीं, ये तो अभिशाप है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने से देखो रेडिएशन आता है, ये होता है, वो होता है, न जाने क्या क्या उसके नुकसान भी है, और मनुष्य उसका आदि हो जाता है। तो दो ग्रुप्स बने, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी था जिसने कहा कि न वो वरदान है न वो अभिशाप है, वो इस समय की मांग है, बस समय की मांग है। और हम लोगों को बाबा ये भी कहते हैं, ये विज्ञान अगर न होता तो इतनी सारी हमारी सेवाएं कैसे होती, ये टीवी नहीं होता तो इतनी सेवाएं जो इस विश्वविद्यालय द्वारा हो रही है वो कैसे होती, आज जूम पर इतनी सेवाएं होती है जो बात मत पूछो, यूट्यूब जूम, हाँ जूम बेबीज बन गए हैं जूम बेबीज, जिन्होंने जूम से ज्ञान सुना। कई हम कहते हमने आपका पूरा ज्ञान समझ लिया, मैं हम उनको कहते कोर्स करो, कहते हमने सब कोर्स कर लिया, टीवी से कोर्स कर लिया, शिवानी दीदी का हम रोज सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं घर बैठे सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो सेंटर पर आने से जो प्रभाव पड़ता है वो घर बैठे जूम पर सुनो या टीवी पर सुनो तो देखो, उससे उतना फर्क तो पड़ जाता है ना। खैर कोई भी है, लेकिन ये साइंस पावर, वेपन पावर, मशीन पावर, ये सब पावर्स कब तक चलेगी? आज इतना स्ट्रेस भी है, वो सब होते हुए भी टेंशन कितना है, शरीर के रोग बढ़ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, धन की सदा खींचातानी रहती है, संबंधों में कितना अनबन हो गया है। लेकिन वो भारत भी हमारा था जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करता था बसेरा, वो भारत देश हमारा था। तो वो समय भी था जहाँ तन का भी सुख था, मन का भी सुख था, धन का भी सुख था, संबंधों का भी सुख था, आज चारों प्रकार का वो सुख नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी डर है। तो इसीलिए अभी अभी जो समय की मांग है वो है अंतर की शक्ति। जैसे स्ट्रेस होता है, तनाव, तो तनाव की डेफिनेशन क्या दी जाती है साइंस में, इक्वेशन है, व्हाट इज टेंशन, सो टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। टेंशन केवल प्रेशर नहीं है, जो बाहर का प्रेशर हमारे ऊपर है वो ही टेंशन नहीं लाता है, लेकिन जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा टेंशन बढ़ेगा। लेकिन टेंशन इज प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। रेजिलियंस माना अंदर की शक्ति। अब आपके पास एक रबर बैंड हो, वो रबर बैंड को आप ऐसे करो टूट जाएगा क्योंकि बहुत कमज़ोर है। लेकिन कई ऐसे रबर बैंड होते हैं, इतना भी खींचो, इतना भी खींचो, कितना भी, तो क्या होता है, टूटते नहीं हैं, क्योंकि अंदर की शक्ति बहुत है। वो अंदर की शक्ति होने के कारण वो प्रेशर उसको उसको तोड़ नहीं सकता है, तो इसलिए उसका स्ट्रेस टेंशन कम हो जाता है। तो अगर स्ट्रेस को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और प्रेशर तो कम होने वाले नहीं है, सब जगह से खींचातानी है, कितनी खींचातानी है। लेकिन दूसरा तरीका है कि रेजिलियंस को बढ़ाना, अंदर की शक्ति को बढ़ाना। तो प्रेशर को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की शक्ति वो हमारे हाथ में है, बाहर की शक्ति नहीं, अंदर की शक्ति। वो अंदर की शक्ति कैसे बढ़ेगी, किसको कहते हैं अंदर की शक्ति, कि कोई भी हमारे सामने समस्या आए, वो समस्या हमको हमारी स्थिति को ऊपर नीचे न करे। कोई भी आए, कोई कुछ भी कहे, हम अपनी स्थिति को न बिगाड़े। एक बलून देखा है ना, उसको हवा भरो तो कितना फूल जाता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन जरा सी एक सुई लगी क्या होता है, सारी हवा खत्म, उसकी सुंदरता खत्म, जरा सी सुई लगी तो किसने हमारी महिमा कर दी, तो वाह कॉलर अप, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी महिमा की उसने। लेकिन कल हमने सुन लिया किसी से कि इसने मेरी ग्लानी की, तो क्या होता है, हाँ? क्या होता है, उसे सुई लग गई, और सुई लग गई तो सारी वो खुशी खत्म। लेकिन सच्चा ज्ञानी किसको कहेंगे, सच्चा ज्ञानी उसी को कहेंगे जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, महिमा निंदा, सब में समान रहे, वो सच्चा ज्ञानी है। ऐसे नहीं मान मिला तो नशा चढ़ गया और अपमान हुआ तो दुखी हो गए। अपमान भी क्यों महसूस होता है, क्योंकि अभिमान है। तो सच्चा सशक्तिकरण किसको कहेंगे, अभिमान में मत आओ, इन संसार की चीजों का अभिमान मत रखो, ये सब विनाशी है। लेकिन अंदर का स्वमान हो, जिसको हम कहते हैं आत्मा को मान दो, हर आत्मा शांत स्वरूप है, तो कुछ भी हो जाए पर मेरी शांति भंग न हो, इसको कहेंगे स्वमान। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी अंदर की खुशी न जाए, इसको कहेंगे स्वमान, क्योंकि वो मेरी निजी चीज है ना। जैसे पानी होता है, पानी का जो उसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, पानी तो ठंडा ही होता है, लेकिन उसको गर्म किया जाता है, आग दे, आग पर रखते तो गर्म हो जाता है, लेकिन फिर उसको रख दो बाहर तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा पानी, वो गर्म ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो आग जो उसमें गर्मी थी वो निकल जाएगी, उसके अपनी अपना जो गुण है वो वापस आएगा। तो हर आत्मा का अपना मूल स्वभाव जो शांति है, आज वो नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को भूल गया है, इसलिए शांति बाहर ढूंढ रहा है, कहीं से शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, सब कुछ है। कईयों को हम कहते ना, आपके जीवन में तो आपको सब कुछ है, क्या कमी है, कहते बहन जी सब कुछ है भगवान की दया से, सब है, लेकिन बस शांति चाहिए। क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति तो कितनी बड़ी शक्ति है, बाकी सब कुछ हो जाए शांति न हो तो वो जीवन ही किस काम का। जीवन में सब कुछ हो पर जीवन निराशा से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, मन इतना बेचैन है, अशांत है, डिप्रेशन हो गया, तो वो कैसा जीवन है। तो वो उस न हो उसके लिए अंदर की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कहाँ से आएगी, जब हम खुद को पहचानेंगे, उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनसे संबंध जोड़ेंगे, वो शक्ति आएगी। इसलिए गीत भी क्या गाते हैं, गीत भी बड़े सुंदर सुंदर गाते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हम भूल जाते कि हमारा सच्चा साथी ईश्वर है, केवल अंतिम साथी नहीं है ईश्वर। जब अर्थी ले जाते तो कहते राम नाम सत है, सत बोलो गत है, अंत में राम नाम याद आता है, बाकी सारा जीवन तो मैं मेरा तू तेरा तेरा मेरा उसी में फंसे रहते हैं। भगवान तो भूल ही जाता है, अगर याद भी रहता है तो भी कब, जब बहुत दुख होता है, हे भगवान, तब याद रहता है। कई बार एक जोक बताते हैं ना कि एक व्यक्ति था, बचपन में तो माँ बाप उनको मंदिर में ले जाते थे, रोज पूजा करता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ धंधे में लग गया तो भी जाता था, बस 5 मिनट लगता था, बस 5 मिनट फिर आ जाता था, टाइम नहीं। आखिर इतना बड़ा बिजनेस फैला दिया लेकिन मंदिर तो जाता था, और बाहर से कहता था हाय बाय हाय और बाय, बस इतने लिए टाइम था, बाकी तो अपना ही संसार है। गो एंड डाई, वही ना, हाय और बाय बस, क्योंकि टाइम नहीं है, उतना ही टाइम है, और आगे चल करके वो भी टाइम मिलेगा या नहीं पता नहीं, हाय और बाय करने का भी लेकिन हमारा समय किस में जाता है? हर वक्त कोई हमारी सोच कोई बहुत पॉजिटिव, बहुत ऊंची, बहुत शुद्ध, बहुत शुभ नहीं होती है। कितनी नेगेटिव थिंकिंग है हमारे मन में, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग है उसमें कितना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति कितनी व्यर्थ जाती है, कितना व्यर्थ जाता है, और उसमें हम कितना समय दे देते हैं नेगेटिव सोचने में, व्यर्थ बातें सोचने में, इधर उधर की बातें सोचने में। अब परमात्मा कहते हैं वो सब भूलो, इसलिए गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब देह अदेह के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, ये परमात्मा कहते हैं, उनकी शरण में ही शांति है। पर शरण में शांति का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ करके एक जगह बैठ जाना है, परमात्मा हमको ऐसे नहीं कहते, शिव बाबा ऐसे नहीं कहते, छोड़ो कुछ भी नहीं लेकिन फंसो कहीं भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी कला है, ये कला है, छोड़ना भी नहीं है और फंसना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ना भी सहज है, सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं नहीं रहना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, पत्नी बच्चों को विधवा बना दिया, बच्चों को अनाथ बना के चले गए, बेचारी पत्नी बच्चों को संभालती रहती है, तो छोड़ना तो बहुत सहज है और फिर फंसना भी बहुत सहज है। वो जैसे मकड़ी क्या करती है, अपने ही मुख से जाल बुनती जाती है और फिर उसी में ही फंस जाती है। मकड़ी अपनी जाल से निकल नहीं सकती है जब तक वो खुद वापस वो जाल अपने मुंह में वापस न डाले, क्योंकि मुंह से ही निकालती है और उसी में ही रहती है। भले हम लोग, मुझे याद है मैं जूलॉजी में पढ़ते थे, वो मकड़ी जो जाल बनाती है वो कीड़ों को पकड़ने के लिए बनाती है ताकि कीड़े उसमें फंस सके, उनका भोजन बने, नहीं तो मकड़ी कहाँ जाएगी, तो कीड़े उनको भोजन में मिल जाते हैं, लेकिन अपने मुंह से ही निकालती है और उसी में फंसी रहती है। जहां मकड़ी होगी वहां उसका जाला जरूर होगा साथ में, तो मनुष्य भी क्या इनसे कम है क्या, मकड़ी की जाल बुनता रहता उनसे भी ज्यादा है, वो तो चलो ऐसे करो मकड़ी की जाल गिर गई खत्म हो गई, और मनुष्य जो जाल बनाता है वो जाल तो ऐसी जाल होती है जो उसमें पड़े तो भी मुसीबत, निकले तो भी मुसीबत, ऐसे ही हाल है कलयुगी दुनिया में। लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है कि ये कला आती है, आए कि जब चाहे उनसे न्यारा भी हो जाए। सबसे अच्छा उदाहरण है कछुआ। कछुआ क्या करता है, चलता है तो अपने हाथ पैर निकालता है, और जब निकलना है तो क्या करता, अपने हाथ पैर अंदर में ले लेता है। अब हम हाथ पैर तो नहीं अंदर में ले सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब आपके अंदर के चल रहे हैं। तो ऐसी रिट्रीट में आप सभी आए हो, सेल्फ एम्पावरमेंट मेडिटेशन रिट्रीट। तो आपको बताया गया बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे, टॉपिक्स पर क्लासेस होंगे और बहुत यहाँ से लाभ लेकर के जाएंगे। ठीक है, सभी खुश हैं? हाँ, संतुष्ट हैं? जरूर। तो खुश भी है, संतुष्ट भी है और 3 दिन के बाद भरपूर भी हो जाएंगे। हाँ, तन मन सब बिल्कुल भरपूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा, फिर मिलते रहेंगे। अभी आपका आगे का कार्यक्रम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो सभी ने दीदी की वाणी का लाभ लिया और रिट्रीट का उद्देश्य क्या रहेगा अवश्य सभी को क्लैरिटी मिली होगी। हम पुनः पुनः दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।